पर ले चलती हूँ। भरत महाराज सुखपूर्वक चक्रवर्ती बन करके और अयोध्या की राजगद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन कर रहे थे। रात दिन धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थों के बारे में बता करके सबको धर्म के प्रति भी आसक्त किया करते थे। यहाँ तक कि अपनी रानियों को, अपने पुत्र पुत्रियों को, सबको वे धर्म मार्ग की ओर हमेशा अग्रसर करते थे, क्योंकि भरत स्वयं में क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। भरत स्वयं में अवधिक ज्ञानी थे और अवधिक ज्ञानी से बनने के कारण वे जान गए थे कि मैं तो इसी भाव से मोक्ष जाने वाला हूं, और वे गए भी इसी भाव से मोक्ष। भरत का चरित्र हम अयोध्या तक सीमित कर देते हैं और भरत के पुत्र अर्क कीर्ति, अर्क माने होता है सूर्य, सूर्य के समान जिसकी कीर्ति थी, ऐसा अर्क कीर्ति जो राज बनारस के अंदर राजा अकंपन के द्वारा जो अपनी पुत्री सुलोचना का स्वयंवर रचाया गया था, वहां भी वह अर्क कीर्ति पहुंचते हैं। अनेक राजा अपने युवराजों को, राजकुमारों को वहां भेजते हैं, कुछ लोग साथ में भी जाते हैं, कुछ लोग राज पुरोहित के साथ अपने राजकुमारों को भेजते हैं, क्योंकि सुलोचना उस युग की एक अत्यंत सुंदरी कन्या थी और उसे पाने के लिए लड़ाई थी। आपने सुना कि सुलोचना का परिचय कराया जा रहा है एक एक राजकुमार से, ये राजकुमार यहां से आए हैं, ये राजकुमार यहां से आए हैं, तो इन परिचयों को सुनकर जैसे ही पता चला कि हस्तिनापुर से राजा सोमप्रभ के पुत्र जय कुमार यहाँ पधारे हैं और इन्होंने सम्राट भरत चक्रवर्ती के युद्ध में मुख्य सेनापति का दायित्व निभाया था, बस तुरंत वह उनके गुणों का बखान सुनकर जय कुमार के गले में वरमाला डाल देती है, अर्थात जय कुमार को अपने पति के रूप में वरण कर लेती है। राजकुमारी सुलोचना जय कुमार को वरमाला डालकर अपना पति बना लेती है और इधर राजकुमारों में सुखुकाहट शुरू हो जाती है। उसमें सबसे अधिक कीर्तिमान, सबसे अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त अर्क कीर्ति को उसके मित्र लोग भड़काते हैं। अरे अर्क कीर्ति, राजा अकंपन ने ये क्या किया, आपकी अवमानना करने के लिए क्या ये स्वयंवर रचा गया है? आपके बैठे रहते आपकी सेना के सेनापति को इस सुलोचना ने वरण कर लिया, और अर्क कीर्ति भी भड़काने में आ जाते हैं। जबकि अनेक मंत्री उनको समझाते हैं कि राजन आपके लिए शोभास्पद नहीं है, आपके पिता भरत की कीर्ति चारों ओर फैल रही है और आप ऐसा कार्य करके जिस कन्या ने एक वर को वरण कर लिया, अब उसके लिए युद्ध करना आपके लिए उचित नहीं है। लेकिन अर्क कीर्ति अपने अपमान का बदला लेने के लिए, जबकि वहां अपमान की कोई बात नहीं थी, ये युग का प्रथम स्वयंवर था, उससे पहले इस युग में कोई स्वयंवर नहीं हुआ था, सुलोचना का पहला स्वयंवर था, और वहां पर अर्क कीर्ति को जब भड़काया जा रहा है तो वह बाहर आकर जय कुमार के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कंचन, कामिनी और कीर्ति के लिए हमेशा से इस धरती पर युद्ध होते चले आए। किसी ने राज्य वैभव के लिए, धन संपत्ति के लिए युद्ध किया, जो कौरव और पांडवों का युद्ध प्रसिद्ध है, किसी ने नारी के लिए युद्ध किया, जिसे कहते हैं कामिनी, उसके लिए रावण प्रसिद्ध है, राम के साथ युद्ध करा। तो ये कीर्ति के लिए जैसे अर्क कीर्ति ने सोच लिया तो वहां पर युद्ध शुरू हो जाता है। जय कुमार की सेना और अर्क कीर्ति की सेना भिड़ जाती है तो दोनों युद्धों में राजा कंपन उन्हें समझाते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, आप समझदारी से काम ले। और इस कन्या ने अपना मन चाहा वर वरण किया है, उनके गले में वरमाला डाली है, जबरदस्ती को किसी से शादी नहीं कराई जा सकती, लेकिन वह अपना अपमान समझता है और बार बार अपने अपमान का बदला लेने के लिए खूब युद्ध करता है। तमाम सैनिक मारे गए, लहू लुहान वह धरती हो गई। इधर बिचारी सुलोचना घबरा गई और वो अपनी माँ के साथ में मंदिर में बैठ करके भगवान के सामने ध्यान करती है। हे भगवान, ये मेरी कौन से पाप कर्म का उदय आ गया? मेरे पिता की आज्ञा से मैंने अपने वर को वरण किया और ये युद्ध होने लगा, अब क्या होगा? मुझे मेरा पति मिलेगा कि नहीं? मारा जाएगा तो क्या होगा? इधर सुलोचना भगवान की भक्ति में लीन है और उधर राजा अकंपन, जिनकी पुत्री सुलोचना थी, वो बार बार समझा करके कहते हैं कि महाराज अर्क कीर्ति, आपका कष्ट पाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और अब हम एक उपाय करते हैं, मेरी एक कन्या और है अक्षमाला, ये सुलोचना और दूसरी अक्षमाला कन्या है, आप उसके साथ विवाह कीजिए। अक्षमाला को तुरंत तैयार किया गया, अर्क कीर्ति को बहुत समझाया गया, तब वो कहीं मानते हैं और उनका विवाह अक्षमाला के साथ हो जाता है। दोनों ही कन्याएं, एक हस्तिनापुर के लिए और एक अयोध्या के लिए आ जाती है, अर्थात स्वयंवर मंडप के अंदर दोनों कन्याओं का विवाह हो गया। तो महानुभाव, यह आदि पुराण के अंदर आचार्य जिनसेन स्वामी ने कहा कि युग का प्रथम स्वयंवर मंडप था और वो पहली कन्या थी जिसने अपने आप उन राजाओं के गुणों को जान करके और अपनी सजातीयता को कायम रखते हुए उसने वरण किया था। आज लोग सोचने लगते हैं कि अगर उसने स्वयंवर में अपने मन का पति बनाया था तो आज क्यों नहीं कोई बना सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, लव जिहाद चल रहा है, लेकिन नहीं, ये स्वयंवर नहीं है। खानदान और खानपान की शुद्धि रखते हुए जो सज्जातित्व की रक्षा करते हैं वही विवाह होता है। राजा लोग भी जब स्वयंवर करते थे, चाहे सीता का स्वयंवर हुआ, चाहे द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, चाहे सुलोचना का स्वयंवर हुआ, इन लोगों ने कोई अपनी वंश परंपरा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, यानी लव मैरिज नहीं किया, अरेंज मैरिज किया, अपने माता पिता की आज्ञा से और क्षत्रिय वर्ण के ही राजकुमारों को बुलाया जाता था और उन्हीं के साथ भी कन्याएं वरण करती थी, विवाह करती थी। ये विवाह का प्रकरण आया कि सुलोचना का संकट भी समाप्त हुआ भगवान की भक्ति से। उस समय सुलोचना कहती है, हे प्रभु, आपकी भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, यानी उसके पति का जब मरण नहीं हुआ और उसका पति सही सलामत आकर के उसे स्वीकार करता है, फिर राजपुरोहित लोग खूब अच्छे से बारातियों के संग में कन्याओं का विवाह करते हैं अग्नि की साक्षी से, फिर लगवा करके विवाह करके और फिर बहुत राजकाज के साथ, लवादे के साथ में, लवादमे के साथ में उन कन्याओं को अपनी अपनी ससुराल भेजा जाता है। तो भव्यात्माओं, इस प्रकार से भरत चक्रवर्ती के कथानक के साथ उनके पुत्र अर्क कीर्ति का भी इतिहास एक स्वयंवर के साथ जुड़ा हुआ था। तो उसको मैंने आप लोगों को बताया है। और इन सुलोचना के बारे में हमने सुना है और पढ़ा है कि एकादशांग भ्रज जाता सारिकापी सुलोचना। जब सुलोचना ने अपने गृहस्थ के कर्तव्यों का निर्वाह किया उसके बाद में उन्होंने भगवान ऋषभ देव के समूह शरण में दीक्षा भी धारण की और दीक्षा धारण करके जहाँ ब्राह्मी माता गणिनी थी, सुंदरी तमाम आरिकाओं में प्रथम थी, वहीं पर सुलोचना ने जाकर के दीक्षा लेकर के ऐसा घोर तपश्चरण किया कि उन्हें 11 अंग का ज्ञान हो गया। आप द्वादशांग की बात करते हैं ना, 11 अंग 14 पूर्व रूप द्वादशांग होता है, तो सुलोचना माता के लिए कहा है कि उनको 11 अंग का ज्ञान हो गया था। तो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके स्त्री पर्याय को सुलोचना ने सार्थक किया और अंत में स्त्री पर्याय को छेद करके आगे जा करके स्वर्ग और मोक्ष का भी वर्णन करते हैं सुलोचना। और जय कुमार का कथानक भी आप पढ़ते होंगे, सुनते भी हैं कि दुखहरण स्तुति पहले रहती थी उसमें पढ़ते थे, आती पे चढ़ी जाती थी सुलोचना सती, गंगा में ग्राने गई गजराज की गति। तो ऐसे समय में भी सुलोचना ने भगवान की भक्ति की और वहां से भी छूटी, आगे संसार की असारता का स्वप्न देख करके, संसार की असारता को समझ करके, उसकी नश्वरता को जान करके दीक्षा लेकर के अपनी स्त्री पर्याय को सार्थक किया। आज यहाँ पर ये भरत भगवान का प्रकरण मैं समाप्त करती हूँ और कल केवल एक बार उनके 923 पुत्रों को किस प्रकार से उन्होंने दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण किया इस बारे में आप लोग श्रवण करेंगे और भगवान भरत के चरित्र को संपन्न करके हम आगे और भी विषयों पर आपको ले चलेंगे। चलो भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।